पहुंचती। एक बहुत बड़ी पहाड़ी थी और उसके एक ओर एक गांव था और दूसरी ओर दूसरा गांव। जो पहला गांव था वहां एक मेंढक रहता था और उसकी बड़ी इच्छा थी ये देखूं कि पहाड़ी की उस ओर जो गांव है वो कैसा है। और जो पहाड़ी के इस ओर गांव था उसमें भी एक मेंढक रहता था, उसकी भी ये इच्छा थी कि ये जानूं कि पहाड़ी के उस ओर जो गांव है वो दिखने में कैसा है। और एक दिन दोनों ही सोचते हैं क्यों ना पहाड़ी के उस ओर जो गांव है उसकी यात्रा की जाए। और दोनों अपनी अपनी यात्रा पर निकल पड़ते हैं। बीच में बहुत जंगल आते हैं, बीच में बहुत मुश्किलातों का सामना करते हुए दोनों ही अलग अलग ओर पहाड़ी के तलहेटी पर पहुंचते हैं और फिर अथक प्रयास करते हुए पहाड़ी की चोटी पर पहुंचते हैं। और वहां पहुंचने के बाद उन दोनों की एक दूसरे से मुलाकात होती है और एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं और क्योंकि थक गए हैं थोड़ा आराम करते हैं और फिर जब उठते हैं तो एक दूसरे से थोड़ी बातें होती है। दोनों ही एक दूसरे को बताते हैं कि हम उस ओर जो गांव है उसको देखने निकल पड़े हैं। और दोनों सोचते हैं कितना ना अच्छा हो यदि हम यहीं से जहां हम जा रहे हैं उस गांव की थोड़ी झलक देख लें। और दोनों एक युक्ति सोचते हैं कि हम ऐसा करते हैं एक दूसरे के कंधे पर खड़े हो जाएंगे, पहले मैं खड़ा होऊंगा फिर तुम खड़े होना ताकि थोड़ा और ऊंचाई से हम वो देख सके जहां हमें जाना है। तो पहले पहला मेंढक खड़ा होता है दूसरे के कंधे के ऊपर। खड़ा तो ठीक ठाक होता है परंतु वो उस ओर देखता है जिस ओर उसी का गांव होता है जहां से वो आया है और अपने ही गांव को देखकर उदास हो जाता है, अरे ये तो वैसा ही है जैसे हमारा है और यहां जाकर क्या मतलब, निराश होकर नीचे उतरता है। और दूसरा फिर पहले के ऊपर खड़ा होता है, वो भी वही दृश्य देखता है अपने ही गांव का और वो देखकर उदास हो जाता है कि जहां मैं जा रहा हूं वो तो वैसा ही है जैसे मेरा गांव है, तो जाने का क्या मतलब। और दोनों ही बहुत बहुत उदास हो जाते हैं और सोचते अभी हम नहीं जाएंगे और दोनों ही वापस अपने अपने गांव चले जाते हैं, जबकि वो दोनों गांव एक दूसरे से बहुत बहुत भिन्न थे। ये बच्चों की कहानी है। कभी कभी बच्चों की कहानी बहुत कुछ सिखाती है जो बड़ों की नहीं सिखा पाती। जैसे कल भी कहा था, कभी कभी झूठी कहानियां ही बहुत कुछ सिखा देती है। तो ये दोनों ही मेंढक बड़े ही मूर्ख थे। जो ये नहीं समझ पाए कि हमें देखना क्या है और वापस चले जाते हैं। आज सुबह की साकार मुरली। बाबा ने कहा, आंखों पर क्या हो, आंखों पर क्या हो, अधिकार शब्द प्रयोग नहीं किया गया है, कुछ और शब्द है, कब्जा। आंखों पर क्या हो, तुम्हारा कब्जा हो। दुनिया के लोग कहते हैं भाई भाई, परंतु समझते नहीं वो, जैसे कि मेंढक की ट्रॉ ट्रॉ। नए नए शब्द मुरली में आते हैं, क्रोकिंग ऑफ द क्रॉ फ्रॉक। केवल कहते हैं, समझते कुछ नहीं। कहीं ये मैं तो नहीं, ज्ञान जब से आए तब से इतना सुना इतना सुना इतना सुना, परंतु शायद अनुभव बहुत कम किया, नहीं तो मुक्ति के लिए छोटे से अनुभव पर्याप्त है। आत्मा किसी एक सूक्ष्म बंधन में बंधी है, कोई अतीत की स्मृति, कोई एक लगाव, कोई एक गुप्त मोह, जिसको अलौकिक स्नेह का नाम दे रखा है, पर है वो मोह। कोई भविष्य की सूक्ष्म चिंता, कोई मन में उलझन, कोई कंफ्यूजन। जब से हम चल पड़े और अब तक, यदि ये पूछा जाए किसी भी ब्राह्मण से कि अब तक अनुभव क्या क्या किया, ये ना बताओ। जैसे हमें याद है, कुछ समय पहले एक विदेश की बहन ने एक प्रश्न पूछा था हमसे, ये बताओ तुम कौन हो। वो लगभग 40 साल से भी अधिक ज्ञान में थे और उन्होंने ये प्रश्न पूछा, तुम कौन हो, और ये ना बताना जो मुझे पता है। अब बताओ तुम्हारा परिचय क्या है। अगर ऐसा प्रश्न कोई ज्ञानी ही पूछ दे तो क्या हम उत्तर देंगे उसको? क्या वास्तव में हमने अपने आप को जान लिया है? इस आध्यात्मिक यात्रा में हमने आज तक क्या क्या अनुभव किए हैं, कितने अनुभव किए हैं और किस गहराई से अनुभव किए हैं? क्या ज्ञान में चलना अर्थात अमृत वेला उठना, मुरली क्लास जाना, भोजन याद में बनाना, खाना, ट्रैफिक कंट्रोल करना, नुमा शाम का योग करना, रात में चार्ट लिखना और सो जाना, इतना ही है या इससे भी परे है कुछ? या हमारी स्थिति भी उस मेंढक की ट्रॉ ट्रॉ की जैसी है, जो केवल आवाज करता है, समझता कुछ नहीं? तो इस ज्ञान मार्ग में भी ऐसी कुछ सूक्ष्म बातें हैं जो हमने सुनी तो है परंतु शायद अनुभव नहीं की। बौद्धिक इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग है परंतु अनुभव अनुभव नहीं है। इसी अनुभव को करने मधुबन में आत्माएं आती है भट्टी करने, और भट्टी अर्थात परिपक्व होना, भट्टी अर्थात तपना, भट्टी अर्थात अनुभवी मूर्त बनकर जाना। ज्ञान तो वहां भी सुन सकते हैं, क्लासेस तो वहां भी सुन सकते हैं, परंतु वो केवल क्लासेस सुनना रह जाता है बस। और कभी कभी ये भी एक माया है। वर्तमान समय ये भी कभी कभी केवल सुनना भी एक माया बन जाती है। ईयरफोन लगा के सुन रहे हैं, क्या सुन रहे हैं? इनका क्लास, उनका क्लास, इसकी क्लास, उसकी क्लास। शिव बाबा कहाँ है? शोभा ही नहीं है, केवल क्लास है। तो इस ज्ञानी योगी जीवन में कुछ ऐसी सूक्ष्म बातें हैं जिसकी हम चर्चा करेंगे, जो केवल समझना नहीं है, जो केवल सुनना नहीं है, समझना है, धारण करना है, आत्मसात करना है और उनका स्वरूप बनना है। तो ऐसी हम 26 बातें देखेंगे। जिनका हमें स्वरूप बनना है और शुरुआत करेंगे सबसे पहली आत्मिक दृष्टि, जिसकी आज की मुरली में चर्चा बाबा ने की है। आंखें ऊपर कब्जा रखो, ये आंखें बहुत धोखा देती है, आंखें क्रिमिनल हो जाती है। कुछ दिन पहले मुरली थी, अच्छे अच्छे सेंटर के अच्छे अच्छे बच्चों की भी क्या क्रिमिनल आईज है, अच्छे अच्छे सेंटर्स के अच्छे अच्छे बच्चों की भी क्रिमिनल आए है, आईज को अभी तक जीता नहीं है, शिथिल नहीं हुई है। कुछ दिनों पहले मुरली थी, तुम्हारी एक एक कर्मेंद्रिया बासी है, छीछी है। इन कर्मेंद्रियों का शुद्धिकरण शांत हो जाए, वो जो उसमें उत्तेजना है, वो जो उसमें वासनाएं छिपी है, वो निकल जाए। विकारों की जो दुर्गंध है, पाप की जो सड़ांध है, वो इन इंद्रियों से लुप्त हो जाए। कैसी साधना है, ये सोचने का वक्त नहीं। धारणा करो, बहादुरी से माया का सामना करो। तो सबसे पहली बात जिसको हमने समझा तो है पर शायद नहीं समझा, जिसको हमने जाना तो है परंतु शायद नहीं जानना, वो है आत्मिक दृष्टि। जब भी हम किसी को देखते हैं तो उसका चेहरा दिखता है। 20 साल पहले मधुबन के आंगन में हमें किसी ने एक गिफ्ट दी। हमको पूछा जाए वो गिफ्ट क्या थी, याद नहीं। हमको पूछा जाए जिस व्यक्ति ने गिफ्ट दी थी उसका नाम क्या है, याद नहीं। ये पूछा जाए कौन सा समय था, दिन था, दोपहर थी, रात थी, धुंधला सा याद है, पता नहीं। वो किस जगह से थी वो आत्मा, याद नहीं। पर ये पूछा जाए वो स्त्री थी या पुरुष था, वो याद है, वो नहीं भूला है। वो बहन थी या भाई था, ये भूला नहीं है। स्त्रीत्व और पुरुषत्व से भी परे चले जाना, वो है आत्मिक स्थिति। परंतु आत्मा में इतना गहरा बैठा हुआ है, बाबा ने दादियों को नारीत्व से भी ऊपर जाने का अभ्यास सिखाया। ये अभ्यास ही नहीं करो कि मैं नारी हूं, समझो मैं चतुर्भुज विष्णु हूं, ऐसे ऐसे अभ्यास कराए मर चुके हो, कफन ओढ़ा है। सबसे पहला अभ्यास जो करना है वो है रोज अमृत वेला, सभी आत्माओं को इमर्ज करना है, देखना है उनको। जिस जिस का दिल तोड़ा था, जिस जिस को नाराज किया था, जिस जिस को उदास किया था, उससे सूक्ष्म में माफी मांगनी है रोज। जब तक किसी एक आत्मा की बद्दुआ हमारे साथ चल रही है, इस मार्ग में आगे नहीं बढ़ा जा सकता, चाहे वो ज्ञान का विरोध करने वाले घर के ही लोग क्यों ना हो, वो हमें ज्ञान योग में आगे नहीं बढ़ाएगी। इसके लिए अमृत वेला अभ्यास करना है, संसार की सभी आत्माओं को इमर्ज करना और उन्हें सकाश देना, उनसे माफी मांग लेना। कहा जाता है कि जैसे संसार में एक पिता है, उसकी बेटी का ऑपरेशन होना है, बहुत बड़ी सर्जन है, सर्जरी है, ओपन हार्ट सर्जरी है, डॉक्टरों का कहना है पता नहीं ठीक होगा कि नहीं होगा। वो पिता बेचारा इतना परेशान है, घर आता है और फिर एक एक दोस्त के घर जाता है और कहता है कि मैंने यदि तुमको कभी सताया होगा, कभी तुम्हारा दिल दुखाया होगा, आज मुझे माफ कर दो क्योंकि मुझे आज तुम्हारे दुआ की आवश्यकता है, क्योंकि मैं असहाय निसहाय हूं। यदि तुम्हारी बद्दुआ मेरे साथ रही तो मेरी बेटी नहीं बचेगी, इसके लिए अमृत वेला यह अभ्यास करना है और उसका रिफ्लेक्शन, उसकी प्रतिछाया सारे दिन भर होगी। सीधा दिन में यह अभ्यास नहीं किया जा सकता, सबसे पहले अमृत वेला। सेंटर पर प्रोग्राम है शाम को, अमृत वेला ही सभी आत्माओं को इमर्ज करना। शाम को कोई कोर्स करने आ रहा है, आधा कोर्स सूक्ष्म वतन में हो, बचा हुआ नीचे, जब वो आए वहीं उसका कोर्स कराना है ऊपर बैठकर, क्योंकि आत्माएं शब्दों को कहां कैच करती है। सामने कोई व्यक्ति बैठ रहा है, बोल रहा है, हमारी बुद्धि तो कहीं और जा रही है, जो कैच किया जा रहा है वो है सूक्ष्म प्रकंपन वाइब्रेशंस। तो आत्मिक दृष्टि कितना हमने इसको समझा है, यह हमारी स्थिति भी मेंढक की तरह है, ट्रॉ ट्रॉ, केवल कहने मात्र और समझा नहीं है। तो अमृत वेला ये दो काम करने हैं, आत्माओं को इमर्ज करना और उनसे क्या करना, माफी मांग लेना। किसी भी जन्म में द्वापर से अब तक यदि मैंने तुमको सताया है, दुखी किया है, उदास किया है, अपशब्द बोले हैं, इंसल्ट की है, विश्वासघात किया है, धोखा दिया है, निंदा की है, ग्लानी की है, हे आत्मा मैं क्षमा प्रार्थी हूं। कौन से शब्द कहना, हे आत्मा मैं क्षमा प्रार्थी हूं, मुझे क्षमा करो। एक तो ये काम करना है और दूसरा काम आत्माओं को माफ कर देना, जिस जिसने शायद हमको सूक्ष्म में सताया हो या हमारे साथ कुछ भी किया हो, उन सभी आत्माओं को इमर्ज करना और उन्हें बेशर्त अनकंडीशनल माफ कर देना। जब तक ये काम नहीं होगा, 6 मास रोज ये काम करना है, 6 मास के बाद रोज रोज करने के बाद एक समय आएगा जब लगेगा कि सिर पे जो बोझ था, जो योग ही नहीं लगता था, आत्मा उड़ी नहीं पाती थी, रोज अमृत वेला बैठते हैं परंतु वहीं घूमती रहती है गोल गोल, उड़ नहीं पाती ऊंचाई में, शरीर उसको खींचता है नीचे, कर्म बंधन खींचते है, क्योंकि कई आत्माओं के साथ ऐसे ऐसे सूक्ष्म और कॉम्प्लिकेटेड हिसाब बना के रखे है कि वही बंधन है। तो अमृत वेला ये 2 काम करना है, आत्माओं को इमर्ज करना, आत्माओं को माफ करना और आत्माओं से माफी मांगना, और आत्मिक और दृष्टि का अभ्यास करना है, फरिश्तों को देखना चमकती हुई ज्योति, और सारे दिन भर फिर इसी अभ्यास का, इसी को अभ्यास करना है कि हमने कितनों को आत्मा देखा। हम हमेशा कहते हैं जब भी हमको कोई मिलता है, यदि वो हमारे गांव का है तो हम कहते हैं आप भी पंजाब से और हम भी पंजाब से, यदि 2 पंजाब वाले कहीं मिल जाए, 2 महाराष्ट्र वाले कहीं विदेश में मिल जाए तो क्या कहते हैं, आप भी महाराष्ट्र से हम भी महाराष्ट्र से, 2 ब्राह्मण गुजरात के कहीं मिल जाए, आप भी गुजरात से हम भी गुजरात से। परंतु हमने ये कहते कम सुना है कि एक ब्राह्मण दूसरी ब्राह्मण आत्मा से मिलता है और कहता है आपको मिलकर बहुत खुशी हुई, आप भी परम धाम से और हम भी परम धाम से, इसका कम अभ्यास है, उस घर की स्मृति कम है जहां से आए थे, वो जो निस्तब्ध मौन है उसका अभ्यास बहुत कम है। एक शिष्य अपने गुरु के पास जाता है, जैन मास्टर के पास, और कहता है बहुत बोलना अच्छा है या मौन रहना अच्छा है? सुबह है ना, बुलावा डालो। गुरु कहता है तुमने मेंढक को देखा है? सारे दिन भर पटर पटर ट्रॉ ट्रॉ कहते रहता है, कोई सुनता है कि उसको? और मुर्गा देखो, एक ही बार सुबह बांग देता है, सबको जगाता है और सबको उठा देता है। अब तुम सोचो, ज्यादा बोलना ठीक है या कम बोलना ठीक है? पर कम बोलना जैसे ही पुरुषार्थ किया जाता है, उसी दिन ज्यादा बोल दिया तुमने। इसके लिए एक दूसरी बात बता रहे हैं, कम बोलना पुरुषार्थ नहीं है। पुरुषार्थ है, मौन का पुरुषार्थ नहीं करना है, कम बोलने का पुरुषार्थ नहीं करना है, ज्यादा सुनना है ये पुरुषार्थ करना है। तो अपने आप साइड इफेक्ट में बोलना कम आएगा। तो सबसे पहली चीज है आत्मिक दृष्टि का अभ्यास, अमृत वेले करना है, दिन भर करते रहना है, सूक्ष्म में कहीं पर भी बैठकर, मधुबन के आंगन में बैठे हैं और लोग आ रहे जा रहे, ये सोचो ये देवकुल की आत्माएं विचरण कर रही है, सड़क पर जा रहे, ट्रैफिक में जा रहे, ट्रैफिक में फंस गए, गाड़ी बीच में है, बजाय इसके कि सरकार को दोषी ठहराए कि ये करते क्यों नहीं कुछ, मैं आत्मा मुझसे सूक्ष्म तरंगे निकल रही है, क्योंकि ट्रैफिक पर चलने वाले वो लोग कितने बेचैन हैं, कितने दुखी हैं, कितने उदास हैं, कितनी चिंता में, टेंशन में, स्ट्रेस में चल रहे हैं। कल की अव्यक्त वाणी पंजाब ग्रुप से मुलाकात, क्या कहा? चंद्रमणि दादी छुट्टी ले रही है, बाबा ने कहा पंजाब वालों को ये काम करना है, जहां हलचल है वहां अचल बनाना है, जहां शांत है वहां शांत करना है, शेर अर्थात आगे रहने वाले पीछे नहीं। सबसे पहला अभ्यास इसको बढ़ाना है और इसका आधार है आत्मिक स्थिति का अभ्यास। सारे ज्ञान योग का सार तो एक ही शब्द है, एक ही लाइन, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद कर। इस एक लाइन को समझाने के लिए 69 या साकार प्लस 69 से लेके जितनी अव्यक्त वाणियां चली, बस इस एक लाइन को समझाने के लिए। दूसरा अभ्यास है बैलेंस। इसको हमने जाना तो है, परंतु समझा कितना है, धारण कितना किया है बैलेंस को। और ब्राह्मण जीवन में ढेर सारे प्रकार के बैलेंस बाबा ने सिखाए हैं, कहीं तो प्रेम और शक्ति का बैलेंस, कहीं ज्ञान योग का, कहीं योग सेवा का, लौकिक अलौकिक का, कथनी करनी का, बहुत सारे बैलेंस है। हमारे जीवन में कितना बैलेंस है? देखा गया है वर्तमान समय आत्माओं को दो चीजों में बहुत रुचि है, चार सब्जेक्ट्स में, पहला तो योग और दूसरा सेवा, दिन रात सेवा 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 सेवा, और या तो योग करते हैं। ज्ञान केवल सुनना या पॉइंट्स लिखना, बस यहां तक सीमित है, पर ज्ञान की बहुत गहराई है, ज्ञान कितना गुह्य है। मैं तुमको गुह्य गुह्य बातें समझाता हूं, मैं तुमको नई नई बातें समझाता हूं, मैं तुमको रोज नए राज बताता हूं, उस गहराई में जाना है। ये देखना है कि जीवन में बैलेंस कहां तक है, लव लॉ का बैलेंस। किसी के प्यार में इतना दीवाना और इतना पागल ना हो जाए कि लॉ ही भूल जाए। महाभारत में युधिष्ठिर से पूछा गया, जब तुम्हारी मां कुंती तुम्हारे पास बैठी और कमरे में कोई नहीं, तो क्या तुम्हारा मन विकार से मुक्त है? धर्मराज है वो, उससे पूछा गया है, वो कहता है आई एम नॉट श्योर। लॉ मर्यादा है, कवच है, दुर्ग है, फोर्ट है, इससे बाहर निकलते ही लक्ष्मण रेखा से पार रावण अपना पुष्पक विमान लिए खड़ा है, इधर से बाहर और उधर से किडनैप हाईजैक और सीधा शोक वाटिका, और फिर वहां बैठ के पुकारना आ जाओ आ जाओ आ जाओ, और राम जी आते नहीं, कम से कम किसी को तो भेजो। जहां जहां सूक्ष्म श्रीमत की उल्लंघन, श्रीमत का उल्लंघन होगा, परिणाम होगा पश्चाताप और दुख। देखना है बैलेंस कहां तक है और किन चीजों का मुझमें बैलेंस चाहिए, ज्ञान योग का, योग सेवा का, स्नेह शक्ति का, स्नेह लॉ का, लौकिक अलौकिक का, बैलेंस कहां है। बैलेंस अर्थात इधर भी ज्यादा नहीं और उधर भी ज्यादा नहीं, न्यारा और प्यारा, इधर भी ज्यादा नहीं उधर भी ज्यादा नहीं, इतना प्यारा बनना बन गए कि न्यारा बनना भूल गया, या इतना न्यारा बन गए कि डिटैच हो गए सबसे, वो भी नहीं ये भी नहीं। अति सर्वत्र वर्जते, बीच में ताली किसके लिए बजती है, जो रास्ते पे चलता है उसके लिए या जो रस्सी पर चलता है उसके लिए, जो रस्सी पर चलता है, क्यों, क्योंकि वहां क्या है बैलेंस। एक तरफ अधिक खाना, एक तरफ न खाना, एक तरफ बहुत सोना, एक तरफ सोना ही नहीं, ना अति ऊंचम ना अति नीचम, गीता। बीच का जब तक नहीं तब तक स्थिरता नहीं, परंतु मनुष्य का मन पेंडुलम जैसा घूमता है, पहले तो एक तरफ वैराग आ जाता है, उधर जाता है, और जब वैराग आता है फिर से इधर आता है, और फिर से अति आसक्ति में जाता है, भटकता है इधर से उधर उधर से उधर, स्थिर नहीं रहता, एकदम पवित्रता एकदम ब्रह्मचर्य में चला जाता है, और फिर वहां से विकार खींचता है, फिर एकदम विकार की तरफ चला जाता है, विकार में ज्यादा जाने के बाद एकदम विकारों से नफरत आती है, फिर से ब्रह्मचर्य की तरफ आता है, फिर से इधर फिर से उधर। भोजन का भी ऐसा ही, नींद का भी ऐसा ही, प्यूरिटी का भी ऐसा ही। लोग मधु बनाते हैं, सोचते हैं बिल्कुल ज्वालामुखी योग करना है, उधर 4 बजे भी आंख नहीं खुलती, पर मधु बनाने के बाद 2 बजे का एकदम भयंकर नशा। बैलेंस, यहां आने के बाद एक काम करना है सभी को, यहां बैठे बैठे अपनी वहां की दिनचर्या को याद करना है, यहां बैठे बैठे वहां जाके क्या करनी है इसकी प्लानिंग करनी है, क्योंकि लोग यहां आते ही उधर की दुनिया भूल जाते हैं, याद ही नहीं करना है उधर का क्या करना है, बिल्कुल बस इधर ही रहना है, बाबा की याद में, बहुत अच्छी बात है, पर वहां जाते हैं तो उधर के बन जाते हैं, यहां आते हैं तो यहां के बन जाते हैं। इसलिए काम क्या करना है, जब यहां है तब वहां की प्लानिंग बनानी है, यहां से जाते ही घर में क्या करना है, पति पत्नी बच्चों से क्या करना है, ऑफिस में क्या करना है, सेंटर पर क्या करना है, योग का चार्ट कैसे बढ़ाना है, उस दिनचर्या को यहां इमेजिन करनी है, यहां विजुअलाइज करके वहां की सेटिंग वहां की प्लानिंग यहां बनानी है, वहां के संबंधों में जो हलचल चल रही है गड़बड़ चल रही है उनको साक्षी होकर यहां देखना, क्योंकि अभी उस टाइम जोन और उस एरिया से बाहर है तो यहां साक्षीपन ज्यादा है। ये काम करना है। मधुबन अर्थात सतयुग, ज्ञान सरोवर अर्थात त्रेता युग, शांतिवन अर्थात द्वापर युग, और उसके बाद चालू होता है कलयुग। उधर जाते हैं ट्रेन में बैठते ही उधर का नशा चालू होता है, यहां तो बहुत नशा है, क्या करूं और क्या नहीं, ऐसा पुरुषार्थ करूंगा करूंगी कि सबको पीछे छोड़ना है अब तो, और वहां जाकर जैसे थे जो पहले थे बस वैसे ही। इसके लिए यहां पर सूक्ष्म काम करना है, सभी के बीच में तो रहना है पर बीच बीच में एकांत निकालना है अपना, बाबा की कुटिया में जाकर बैठो और अपने सारे जीवन को रिवाइज करो, बाबा के कमरे में शांति स्तंभ पर जाकर बैठो और वहां पर देख लेना ये ब्रह्मा का जीवन, ये मेरा जीवन ठीक ठाक है। थोड़ा भी कंपैरिजन है, सिमिलैरिटी क्या है, बैलेंस। तीसरा है संतुष्टता। इसके बारे में सभी कहते हैं संतुष्ट मणि भव, संतुष्ट मणि का प्रकाश चारों ओर फैलता है, पर क्या वास्तविक में संतोष है जीवन में, या जीवन अभी भी भाग रहा है संसार की तरफ, लौकिकता की तरफ, संसार की प्राप्तियों की तरफ। पहले लौकिक में थे तो लौकिक के पीछे भागते थे, अभी अलौकिक में है तो अलौकिक के पीछे भागते हैं। संस्कार वही चल रहा है, जैसे एक व्यक्ति है जो पहले किसी गांव में रहता है और सबसे झगड़ा करता है, रोज झगड़ा करता है, सुबह से लेकर रात तक एक एक को पकड़ पकड़ के झगड़ा करता है। फिर वो व्यक्ति अध्यात्म में आ जाता है, संन्यास ले लेता है, किसी गुरु की शरण में आ जाता है, कई साल तक अध्ययन करता है, गुरुकुल में रहता है और फिर एक विद्वान सन्यासी बन जाता है जिसके पास सारे शास्त्रों का ज्ञान है। और अब वो शास्त्र लेकर घूमता है एक एक शहर में और एक एक से वाद विवाद करके एक एक को हराता है। पहले भी वही था झगड़ा, वो झगड़ा अब भी चालू है, काली रूपरेखा बदली है, तब अज्ञान था, अभी उसका ज्ञान है। अभी भी एक एक को पकड़ पकड़ के हराता है, एक एक से झगड़ा करता है कि मैं जो ज्ञान सुना रहा हूं वही साइट है। एक बहुत पुरानी बहन जो ज्ञान में चलते हैं, उन्होंने हमको अनुभव सुनाया था कि वो जो एकदम नई नई ब्रह्मा कुमारी बनी है, ऐसा नशा चढ़ गया ज्ञान सुनाने का, इतना नशा कि एक भी नहीं छूटने पाए, एक एक को पकड़ के ज्ञान सुनाना है। उसने बताया कि एक दिन ट्रेन में जा रही थी और वो वहां चालू हो गई ज्ञान सुनाना, आत्मा से चालू किया तो सीधा श्वास तभी रुकती है ब्रह्मचर्य पर, छूटना नहीं पाए चाहिए, पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, प्रजा तो बनानी है। पकड़ के वो कहेगा मैंने सुना है, नहीं सुना होगा तुमने, अब हम सुनाएंगे। रहम तो करते बड़ी बेरहमी से, वो कहेगा मैं अभी अभी सुन के आया हूँ ज्ञान सरोवर में, ना तुमने सुना होगा मैं सुनाता हूँ, बैठो। आत्मा से चालू करके सीधा ब्रह्मा का जीवन और ब्रह्मचर्य, और बाहर का खाना बंद आज से, बेचारा घबरा के वापस कभी नहीं आता है, ऐसा भागता है कि पीछे भी नहीं देखता एक बार। एक भाई ने अनुभव सुना था, अपने लौकिक भाई को बुलाया शांतिवन में, शांतिवन में अपने लौकिक भाई को बुलाया, जो भी मिलता था आत्मा परमात्मा, आत्मा परमात्मा, पूरा दिन। अगले तीन दिन वो शांतिवन के तीन दिन बाहर ही घूमता रहा, अंदर आया ही नहीं। वो बहन बता रही थी कि मैं जब ऐसी ज्ञान सुनाने लगी, एक महिला बैठी थी, बड़ी विद्वान होगी शायद, किसी कॉलेज में बहुत बड़ी प्रोफेसर, तो उसने पूछा बहन जी तुम क्या कर रही हो? उसने कहा ज्ञान सुना रही हो और क्या कर रही हूं, लोगों का कल्याण करना है। तो उस विद्वान महिला ने कहा ये ज्ञान नहीं है, तुम प्रचार कर रही हो। बड़ी चोट लगी अंदर, ये ज्ञान नहीं है, तुम केवल प्रचार कर रही हो और कुछ नहीं। तो बात कर रहे थे संतोष की, कितना विस्तार कर लिया है, चाहे लौकिकता में लौकिकता का या अलौकिकता में अलौकिकता का भी विस्तार, इतना विस्तार, इतना विस्तार, इतना सेवाओं का विस्तार। सेवाएं बहुत अच्छी है, परंतु वो सेवाओं के जंगल में त्याग तपस्या और वैराग्य होना जाए, ये ना भूल जाए कि सेवा तो खिलौना दिया है बाबा ने, ये सेंटर वो सेंटर, यहां सेवा वहां सेवा, बहुत अच्छी बात है स्वयं को बिजी रखने के लिए, परंतु आंतरिक तपस्या चालू रहे। पवित्रता सेवा से अधिक महत्वपूर्ण है, इसको भूलना नहीं है। प्यूरिटी इज मोर इम्पोर्टेंट देन सर्विस। वो सेवा जिसमें ऐसे ऐसे संबंध बन रहे हैं, वो सेवा जहां लौकिकता आ रही है, वो सेवा जहां घनिष्ठता आ रही है, फैमिलियरिटी बढ़ रही है, वो सेवा जहां लगाव हो रहा है, वही भाई चाहिए, वही बहन चाहिए। वो बहन कहा है आज मुरली, उसने क्यों नहीं सुनाई? साकार मुरली में वाक्य आते बाबा ये बहन बहुत अच्छी है, बहन बहुत मीठी मुरली सुनाती है। बाप कहते हैं बच्चू बहन मीठी नहीं है, मुरली मीठी है। संतोष आत्मा तृप्त होगी ज्ञान और योग से। और एक वाक्य अपनी डायरी पर हमेशा के लिए बड़े अक्षरों में लिख के रखना है, सबसे ऊंचा ऊंचाई में, और रोज रिवाइज करना है, आत्मा अनंत है, अनंत की प्यास अनंत ही बुझाएगा। आत्मा कैसी है? अनंत है, सोल इज इन्फिनिट, इन्फिनिट कैन नॉट बी सैटिस्फाइड बाय एनीथिंग विच इज फाइनाइट। अनंत कभी भी संतोष नहीं प्राप्त करेगा जो हद के संबंध है, जो आदि अंत वाले हैं। अनंत की प्यास अनंत की है, उसको अनंत ही बुझा सकता है और कुछ नहीं बुझा सकता। तो तीसरा है संतोष, चौथा ड्रामा। ड्रामा सुना तो है, ड्रामा देखा तो है, ड्रामा जाना तो है, ड्रामा की सारी पॉइंट्स बुद्धि में है, पर कितना हम अप्लाई कर रहे हैं कि ये जो सीन मेरे जीवन में हुआ बहुत एक्यूरेट हुआ था। हमको अब क्यों लगता है कि ये सीन हट जाए, ये अच्छा नहीं था, बहुत दर्दनाक था। बाबा कहता है हर सीन में कल्याण है, हर सीन में तुम्हारा कल्याण छिपा हुआ है। ये शायद नहीं है, इसके लिए ड्रामा की हर पॉइंट्स को रिवाइज करनी है। 24 घंटे में एक बार इसको अपना नियम बना देना है, इस भट्टी से 24 घंटे में एक बार ड्रामा की बैठकर शाम को योग से पहले सारी पॉइंट्स रिवाइज करनी है। कौन कौन सी पॉइंट है ड्रामा की? ड्रामा कल्याणकारी है, ड्रामा एक्यूरेट है, ड्रामा फिक्स्ड है, ड्रामा हो गया कल्याणकारी, ड्रामा नथिंग न्यू, ड्रामा 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 फिक्स्ड, ये तो दूसरा प्रश्न है, इसका कहीं और उत्तर देंगे। ड्रामा परफेक्ट है, ड्रामा में हर एक एक्टर कैसा है? एक्यूरेट। और कैसा है? परफेक्ट। और कैसा है? निर्दोष नहीं, संपूर्ण निर्दोष, सारे झगड़े खत्म, किसी का कोई दोष ही नहीं है, किसी का ही दोष नहीं है। यहाँ हर एक वही कर रहा है जो उसके संस्कार है और जिसके वो अधीन है, इसके लिए किसी से कोई कंप्लेंट नहीं है हमारी। इसने मेरे जीवन में ऐसा ऐसा क्यों कहा, इसने मुझे ये क्यों किया, हमारे साथ अन्याय हो रहा है। ड्रामा न्यायकारी है, ड्रामा विविधतापूर्ण है, ड्रामा एक्यूरेट है, ड्रामा में नथिंग न्यू, ड्रामा फिक्स, ड्रामा भगवान को पसंद है तो तुमको भी पसंद होना चाहिए। और एक लास्ट बात है ड्रामा के बारे में, ड्रामा में कुछ राज, अंत तक राज ही रहेंगे, कुछ कुछ बातें हैं जो शायद ही पता चलेगी, कुछ राज अंत तक राज रहेंगे। तो ड्रामा की सारी पॉइंट्स बीच बीच में याद करते रहना। कुछ दिन पहले मुरली में ड्रामा के बारे में था, स्थैर्यम, स्थिर, अचल, अडोल रहना है तो ड्रामा की पटरी पर खड़े रहना है। तो इस ड्रामा को समझना है, ये खेल हो रहा है। और ड्रामा दो है, किसी ने प्रश्न पूछा फिक्स क्यों है, ड्रामा दो है, एक है छोटा ड्रामा, एक है बड़ा ड्रामा। बड़ा ड्रामा जो हो रहा है, और छोटा ड्रामा मेरे जीवन का है, जो सुबह उठने के बाद मेरे ऊपर है क्या करना है इस जीवन में। वेस्ट कर दूं सारा टाइम सारे दिन भर, या ज्ञान योग के चिंतन में लगाऊं, ये जो छोटा ड्रामा है मेरे वश है, ड्रामा मेरे अधीन है, मैं ड्रामा के अधीन नहीं हूं, मैं ड्रामातीत हूं, ड्रामापति हूं। क्योंकि लोग कहते हैं पुरुषार्थ होगा तो ड्रामा में करेंगे। ड्रामा शब्द प्रयोग यज्ञ में सबसे मिसयूज किया हुआ शब्द है, सबसे ज्यादा मिसयूज, क्योंकि ड्रामा लोग फ्यूचर के लिए कहते हैं, ड्रामा फ्यूचर के लिए नहीं, जो हो चुका है उसके लिए ही ड्रामा शब्द के लिए प्रयोग करना है। बस फ्यूचर का जो है वो मैं क्रिएट करूंगा, आई एम द क्रिएटर, इसके लिए कहा जो छोटा ड्रामा है वो मैं क्रिएट करता हूं। हाँ, जो अल्टीमेटली वो जो होता है वो फिर वो जो बड़ा ड्रामा है उस अनुसार हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं चुपचाप बैठ जाऊं कि मुझे कुछ करना ही नहीं है, ड्रामा में होगा तो देखेंगे। मैं क्रिएट करूंगा ड्रामा, मुझे क्रिएट करना है, सब कुछ मैं चेंज कर सकता हूं अपने संकल्प से। पुराना ड्रामा भी पसंद नहीं है तो ज्ञान योग की कमी है, शायद संकुचित दृष्टि से देखा जा रहा है, छोटी सी दृष्टि से देखा जा रहा है, हमें लग रहा है ऐसा क्यों वैसा क्यों, ये सीन हटा दो बाबा इस ड्रामा से। पर वो ड्रामा का सीन आपको पसंद नहीं है, बाकियों को तो पसंद है, हमारे साथ अच्छा नहीं हो इसलिए हमें पसंद नहीं, परंतु जिसके साथ अच्छा हुआ उसे तो पसंद है। हम ये नहीं कह सकते कि ड्रामा का ये सीन अच्छा नहीं है, ड्रामा का हर एक सीन अच्छा है। राम रावण, ये रावण जोर जोर से अट्टहास करता है, चिल्लाता है, हंसता है, लक्ष्मण को गुस्सा आता है, पर थोड़ी देर के बाद दोनों भी पर्दे के पीछे बैठकर चाय पी रहे हैं क्योंकि वो रामलीला चल रही है, रामलीला मंडली है, वो दोस्त है। स्टेज पर आते हैं और एक दूसरे पर चिल्लाते हैं, तुम्हारी ये मजाल, तुमने सीता माँ को लेके गए, मैं छोड़ूंगा नहीं। क्रोध आता है लक्ष्मण को, थोड़ी देर के बाद दोनों बैठ के चाय पी रहे हैं। ये ड्रामा भी ऐसा ही है, एक एक को पाट दिया गया। रावण का क्या दोष? अच्छा है, एक मुरली में था, ना राम का दोष ना रावण का दोष, किसी का भी दोष नहीं है। अच्छा है, रावण है तो ही तो रामायण बनी, नहीं तो वनवास 14 वर्ष करके पूरे घर, किसी को कुछ खबर नहीं, पता नहीं। तो ड्रामा है। उसके बाद है इकोनॉमी। हम कहते हैं इकोनॉमी, यज्ञ की इकोनॉमी, कितना हमने समझा है, या हमारी स्थिति बस उस मेंढक के ट्रॉ ट्रॉ जैसी है। इकोनॉमी अर्थात कमरे में गए, लाइट चालू, कमरा बंद करके आ गए, जाने के बाद देखा अभी भी लाइट चालू, बाथरूम का लाइट चालू, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, पानी, बिजली, भोजन, ब्रह्मा भोजन बन रहा है, पता नहीं खत्म हो जाए, सब डालो, और बाद में पता चलेगा तो मुझे ठीक नहीं लगता है, रख दिया। चाय ले ली एक ग्लास भरकर, आधा पिया और आधा रख दिया। भंडारा है वहां जाकर देखो, मधुबन का भंडारा नीचे, वहां पर एक बोर्ड लगा हुआ है, अव्यक्तवाणी है वहां पर, एक फरवरी की 88 की, यज्ञ का एक एक कणा मोहर है। इस ब्रह्मा भोजन में दुआ भी है तो दवा भी है, ये दुख भंजक भोजन है। इतना सारा ले लिया और वेस्ट कर दिया। घर में ऐसे ही करते हैं, यहां हम देखते हैं कितना वेस्ट करते हैं पार्टी वाले, जो लेना ही नहीं है, जो पता है नई चीज है मत लो, थोड़ा सा लो, बिल्कुल वेस्ट क्यों करना है, बोझ है। यहां आए तपस्या करने और पाप का बोझ लेके जाएंगे। चाय, दूध, भोजन, पानी, इलेक्ट्रिसिटी, डीजल, पेट्रोल, इन सब की इकोनॉमी करनी है। यहां से शांतिवन जा रहे, कुछ खाया पॉलिथिन फेंक दिया बाहर, वेस्ट, पर्यावरण प्रदूषण, इकोनॉमी करनी है, प्रैक्टिकल इकोनॉमी करनी है, हमारे द्वारा कुछ भी वेस्ट ना हो। यज्ञ का और एक दूसरी चीज, यज्ञ के रिसोर्सेस हम पर कम से कम खर्च हो, ऐसी दिनचर्या कि जिसमें बीमारी बीमार पड़ रहे और फिर यज्ञ का पैसा हम पर लग रहा है। यज्ञ का ही पैसा है, चाहे सेंटर रहने वाले चाहे घर में रहने वाले, यही समझना मेरी पालना यज्ञ से हो रही है, सारा पैसा यज्ञ का है, मुझ पर व्यर्थ खर्च ना हो। अव्यक्त महावाक्य है बाबा की, इन्वर्टेड कॉमा, जो बच्चे अपनी गलती से बार बार बीमार पड़ते, लिख के रखो अपनी डायरी पर, जो बच्चे अपनी गलती से बार बार बीमार पड़ते, बाप दादा उन्हें ज्ञानी और योगी आत्मा नहीं कहते। दूसरा महावाक्य इन्वर्टेड कॉमा, जो शरीर को चला नहीं सकते वो राज्य को क्या चलाएंगे। यही बीमार पड़ते अपनी अपनी गलतियों के कारण, आज ये खा लिया, आज वो खा लिया, इतना खा लिया, इतना खा लिया, ब्रह्मा भोजन पता नहीं बाद में मिलेगा कि नहीं, ओवर ईटिंग और दूसरे दिन लूज मोशन, डायरिया, क्या ये इकोनॉमी है, क्या ये बुद्धिमत्ता है। जो शरीर को नहीं चला सकते वो राज्य को क्या चलाएंगे। जो अपनी गलती से बीमार पड़ते हैं बाबा उन्हें ना ज्ञानी कहते हैं ना योगी कहते हैं। ये बाबा की महावाक्य है, अपने शरीर को स्वस्थ रखना परम कर्तव्य है हमारा। क्योंकि जब हम बीमार पड़ते हैं तो कितनी सेवाओं पर असर पड़ता है। एक भाई, एक कुमार, एक ब्रह्मा कुमारी, एक माता बीमार पड़ जाए, परिणाम देखो उसका क्या है। स्थूल छोड़ो सूक्ष्म, वो जो अमृत वेला करता था अभी नहीं कर रहा है, विश्व वंचित रह गया, महरूम रह गया उसकी सकाश से, तो विश्व का नुकसान हुआ। इसके लिए ऐसा कुछ नहीं करना है जिससे हम बीमार पड़ जाए, इसके लिए स्वस्थ रखना। फिर व्यायाम करो, प्राणायाम करो, योगासन करो, वॉकिंग करो, सब कुछ करो जो कुछ करना है। दवाई लेनी है तो दवाई लो, उसके बाद में अगला भोजन। तीन नियम। पहला, वो भोजन नहीं खाना है जो उत्तेजित करे। जब तक ऐसा आवाज नहीं निकलता तब तक मजा नहीं आता है। थोड़ा और मसाला, थोड़ा और मसाला। जगदीश भाई ने लिखा था, थोड़ा थोड़ा करते करते हथौड़ा लगेगा। अत्यधिक तीखा, तिक्त, गरिष्ठ, मसालेदार, मसाले युक्त भोजन योगी का भोजन नहीं है। अब ये मत कहना कि हमारा ब्रह्मा भोजन है, हम तो इसको बहुत प्यार से याद में बनाए वगैरह वगैरह वगैरह। मिठासी की बात है। ओम शांति भवन में बाबा कभी आए थे तो कोई बहन थी, भोग बनाकर लेके आई एकदम गरम, और उसने देखा ही नहीं गरम है और सीधा बाबा के मुंह में डाल दिया। तो बाबा ने बहन को बुलाया और बाबा ने उसके मुंह में डाल दिया। वो जो हलवा बना के आई थी इतना गर्म था, और जैसे बाबा ने डाला चिल्लाई, बाबा मुस्कुराए। दादी जानकी ने कभी हिस्ट्री हॉल में पूछा था, बाबा आप जूस पियेंगे क्या? तो भोजन पहला नियम, उत्तेजित करने वाला ना हो। दूसरा नियम, आलस, प्रमाद और निद्रा लाने वाला ना हो। इतना खा लिया कि बस सोचा था मधुबन जा रहे हैं तो अब 2 बजे अमृत वेला करेंगे, उठे तो देखा 6, उठे तो देखा 5:30, उठे तो देखा 4:15, पहुंचते 4:30, 15 मिनट योग कर लिया, बस वेस्ट हो गया। तीसरा, स्वास्थ्यवर्धक हो। तीन नियम भोजन के, 4 नियम और। पहला, हंगरलेस ईटिंग। भूख नहीं है फिर भी खाए जा रहे। जब भूख नहीं है तो सूप ले लो, कुछ ले लो, थोड़ा सा कुछ ले लो, सारा ही भोजन खाने की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य ही एकमात्र प्राणी है जो बिना भूख के खाता है, बाकी कोई जानवर नहीं खाता। बैठे रहेंगे, खाएंगे नहीं। दूसरा, ओवर ईटिंग। ज्यादा लोग बीमार ज्यादा खाने से है या कम खाने से है? ज्यादा लोग संसार में मर रहे हैं कम खाने से? कोई है? अखबार में खबर कितनी आती है कि ये इसने कम खाया इसलिए मर गया? बहुत कम। किससे मर रहे हैं? ज्यादा खाने से। दूसरा नियम, ओवर ईटिंग नहीं। तीसरी वर्जना, रॉन्ग टाइप ऑफ फूड। जो फूड खा रहे हैं वही गलत है, शायद गलत पैसों से आया है, किसी का शोषण करके आया है, किसी को सता के आया है, 2 नंबर की कमाई से आया है। शायद वो भोजन बनाने वाला जो है गलत मानसिकता में बना रहा है। टेस्ट कॉन्शियसनेस है कि हमने भोजन बनाया है, अब केवल एक ही लक्ष्य है कि कोई आकर मुझसे कहे कि बहुत टेस्टी था, बस। ये जब तक नहीं करते तब तक बेचैनी। चौथा, जल्दी जल्दी खाना, क्रोध में खाना और असंतोष से खाना। इसमें नमक कम है, इसमें वो कम है, इसमें वो कम है, हम तो ये पसंद नहीं, हमको तो आदत नहीं इसकी, हम ऐसा क्यों खाएं, हम वैसा क्यों, अपने नखरे। भोजन के नियम है। और भोजन अर्थात पत्रम पुष्पम फलम तोयम योम्या भक्त्या प्रेष्यति। जो कुछ खाए उसे अर्पण कर देना है कि तेरे भंडारे से ये मिला, कितना भाग्य है। संसार के लोग भूखों मर रहे, हमें इतना मिल रहा है, भाग्य है। इतना शुद्ध अन्न मिल रहा है, इतना पवित्र भोजन मिल रहा है, दुख भंजक भोजन मिल रहा है। मौन में खाए, धीरे धीरे खाए, प्रसन्नता से खाए, और कल्पवृक्ष के नीचे मैं आत्मा बैठी हूँ, खा रही हूँ, विश्व को सकाश जा रही है। एक एक निवाला जो अंदर जा रहा है, एक एक गिट्टी संसार के एक एक व्यक्ति तक पहुंच रही है इस संकल्प के साथ। मेरे भोजन से संसार का पेट भर रहा है, मैं अन्नपूर्णा मां हूं। उसके बाद में शुभ भावना, शुभ कामना, खुशी और दुआएं देना, ये नियम है यज्ञ का। सभी को क्या क्या करना है, तीन चीजें देनी है, शुभ भावना, शुभ कामना, दुआएं और खुशी। इस बात को केवल थ्योरेटिकल नहीं कि केवल समझाए, करना है इसे। अव्यक्त महावाक्य बाबा के इन्वर्टेड कॉमा, यदि तुम्हारे मन में किसी एक आत्मा के प्रति भी घृणा है तो तुम संपूर्ण नहीं बन सकते। एक ही व्यक्ति के लिए घृणा है, बाकी सब अच्छे हैं। एक वो व्यक्ति है जिसने मुझे सबसे ज्यादा सताया इस ज्ञानी योगी जीवन में, मेरे ज्ञान में बाधा डाली, योग में बाधा डाली, पवित्रता में बाधा डाली। बाबा ने कहा है चाहे कुछ भी हो, घृणा नहीं रखनी है। जैसे एक माता है जिसका पति उसे, जिसके पति ने उसको 20 साल तक सताया पवित्रता के लिए, मारा, पीटा, जाने नहीं दिया सेंटर पर, सब कुछ किया, और एक दिन वो पति ज्ञान में आ गया 20 साल के बाद। मतलब जब वो सता रहा था तब भी देवकुल की ही आत्मा थी वो, ठीक ही नहीं, इसलिए तो बाद में ज्ञान में आई। इसलिए यही समझना है, सभी देवकुल की आत्माएं, चाहे ज्ञानी चाहे अज्ञानी। हम कौन है स्टैंप लगाने वाले कि ये ज्ञान में नहीं आएगा? हम कौन है स्टैंप लगाने वाले ये बंजर भूमि है, कलराठी जमीन? इसके लिए सबके प्रति शुभ भावना है। अगला है सत्संग, होली कंपनी। सत्संग अर्थात, सत्संग अर्थात कल की मुरली थी ना, सत और सत्य का संग। पहला शिव बाबा का संग। सत्संग का दूसरा अर्थ महान आत्माओं का संग, दादियों का संग। अगर दादियों का संग नहीं तो उनकी आवाज तो है, लेक्चर्स तो है, जानकी दादी, प्रकाश मणि दादी, गुलजार दादी, क्या इन तीनों के सारे लेक्चर सुनकर हो गए हैं जिनके, वो हाथ खड़े करो, सारे लेक्चर सुन के हो गए इनके, लेक्चर सुन के बहुत कम लोगों के हुए होंगे। सारे दादियों को हमने सुन लिया, उनकी सारी क्लासेस, उनकी क्लासेस सुनना अर्थात ही सत्संग है उनका। उनका शरीर में होना ना होना आवश्यक नहीं है। और हम तो कहते हैं कि क्लासेस ही सुनना है, दादियों को छोड़कर ढेर सारी क्लासेस हैं इस समय पर, ये आधार है, अनएडल्ट्रेटेड प्योर क्लासेस है वो, उसमें कोई परचिंतन, कोई मनमत कुछ भी नहीं है, केवल जो बाबा का डायरेक्ट ज्ञान है वही उनके मुख से निकला है। इसके लिए उसमें पावर बहुत है, क्योंकि उनको बाहर का तो पता ही नहीं था संसार क्या है। इसके लिए प्यूरिटी का बल है उसमें, वो है दूसरा सत्संग। तीसरा सत्संग है किताबों का, श्रेष्ठ किताबें, ज्ञान योग की किताबें, ज्ञानामृत। लक्ष्य रखना है, सभी के पास ज्ञानामृत आता है? लक्ष्य रखना है महीने की 10 तारीख के अंदर ज्ञानामृत पढ़ के हो जाना चाहिए पूरा, शुरुआत से अंत तक। इसको नियम ही बनाना है, जैसे ही ज्ञानामृत आए 10 दिन के अंदर वो पढ़ के हो जाना चाहिए। ये मत कहना सेवा बहुत थी और टाइम ही नहीं मिला, मेगा प्रोग्राम था, ये था, प्रोग्राम कभी खत्म नहीं होंगे, सेवाएं कभी रुकेंगी नहीं, वो सब करते हुए ही करना है, समय को चुराना है, 5 मिनट भी वेस्ट ना हो। बैठे हुए हैं, मोबाइल में भी आ जाता है सब कुछ आजकल तो, सारी मैगजीन्स, उसी में बैठकर किसी भाई का अनुभव सुन लो, किसी भाई का अनुभव, कोई जेल में था, क्या क्या अनुभव हुआ, कैसे ज्ञान में मिला, जितना आत्माओं का। कुछ दिन पहले मुरली थी ना, मैगजीन पढ़ो, था ना, कोई कोई बच्चे कहते हैं मैगजीन फालतू है, जरूर वो होंगे जो खुद नहीं पढ़ते होंगे, मुरली में था सर्विस समाचार, दूसरों ने ऐसी ऐसी सर्विस की, हमें भी ऐसी सर्विस करनी है, उमंग आना चाहिए। तो तीसरा सत्संग है किताबें, चौथा सत्संग है सेवा केंद्र पर जाना, पांचवा सत्संग है मधुबन में आना, छठवां सत्संग है सूक्ष्म वतन परमधाम में जाना, राजधानी में जाना, देवताओं का संग करना, मन ही मन। ऑडियो विजुअल सत्संग, डिजिटल सत्संग, नए सत्संगों में। उसके बाद है इनकल्केशन ऑफ वर्च्यूज, दिव्य गुणों की धारणा। ये केवल थियरी ना रह जाए, वो जो 36 गुण लिखे हैं हिस्ट्री हॉल के सामने, देखना इनमें से मुझ में कौन सा है। चार प्रकार की भट्टी है यज्ञ में, एक है योग भट्टी, दूसरी है ज्ञान भट्टी, तीसरी है दिव्य गुणों की भट्टी और चौथी है सेवाओं की भट्टी। अधिक समय सेवाओं की भट्टी में जा रहा है, दिव्य गुणों की भट्टी करनी है। एक गुण उसमें से उठाना है, अनुशासन, अब इस पर काम करना एक हफ्ता। एक गुण उसमें से उठाना सत्य, फिर उस पर काम करना एक हफ्ता। इसको कहते हैं दिव्य गुणों की भट्टी। एक है योग की भट्टी, एक है ज्ञान की भट्टी। ज्ञान की भट्टी अर्थात लेन देन करना, आपस में बैठना और बाबा ने ये क्या कह दिया आज, ऐसा क्यों कह दिया आज, इसका क्या अर्थ है, चर्चा करना बैठकर, ये ज्ञान। चार प्रकार की भट्टियां। तो दिव्य गुणों की धारणा वो एक्सप्लेन करेंगे तो बाकी पॉइंट्स रह जाएगी पर एक एक दिव्य गुण पर काम करना है। फाउंडिंग फादर ऑफ अमेरिका बेंजामिन फ्रैंकलिन था, कभी 17वीं शताब्दी, उसने अपना चार्ट बनाता था। रात में सोने से पहले उसने 13 गुण लिख के रखे थे। आज क्या मैंने सत्य बोला, खाने में कंट्रोल रहा, आज किसी को दुखाया तो नहीं। रात को सोने के पहले टिक मार्क चार्ट लिखता था, फिर सोता था। देखो संसार की भी आत्माएं ये करती थी, शायद वो यही होगा कहीं। काम करना है, एक एक दिव्य गुण को उठाना है, उस पर काम करना है कि मेरे में ये बड़ा एक्यूरेसी ले लिया, ये मुझ में थोड़ी कमी है एक्यूरेसी की, इसको मुझे ठीक करना है। अपने जीवन में डिसिप्लिन नहीं है, थक गए, गए बेड पर और सो गए। रात को सोने से पहले नियम बनाना है, मुझे ये चार चीजें करनी ही करनी है, उसके बाद ही सोऊंगा। पहली चीज बाबा के सामने बैठ के बाबा से थोड़ी बात करना, दूसरी चीज थोड़ा सा मुझे पढ़ना है, तीसरा बाबा को अपना सारा समाचार सुनाना है, और चौथा डिजिटल ऑफ, मोबाइल को थोड़ा बाहर रख के ही सोना है आधा घंटा, नहीं तो सोते सोते भी करते करते सो रहे हैं। ये नियम बना दिया, बस बना दिया, अब इसको फॉलो करना है। ये है डिसिप्लिन। ये उदाहरण एक दिव्य गुणों की धारणा का, एक दिव्य गुण उठाया, बस अब इसको करना है। उसके बाद है जीवन यात्रा, मेरी इस अलौकिक जीवन यात्रा में कहां कहां गड़बड़ चल रही है, इसको मुझे समझना है। केवल बोलना नहीं है, 84 की यात्रा और इस जीवन की यात्रा, जब से ज्ञान में आया और तब से अब तक कितनी बार पवित्रता भंग हुई है, कितनी बार सूक्ष्म में ब्रह्मचर्य भंग हुआ है। कई सारे कुमारों का और कुमारियों का फोन आता है, कहते हैं कुछ बात करनी है, कुछ बात करनी है, अकेले में करनी है, बाद में करनी है, और सारी बातें केवल एक ही चीज से संबंधित होती है, ब्रह्मचर्य। जब भी कोई कहता है प्राइवेट बात करनी है, समझ लेना बस यही है और कुछ है ही नहीं। ऐसी गलती कर ली है, ऐसी गलती की है कि बताते हुए शर्म आ रही है, और ज्ञान में आने के बाद ये सारी गलतियां हुई है, ऐसे शब्द होते हैं उनके। और आत्मा जल रही है अंदर से, तड़प रही है, पर छूट नहीं पा रहे, अभी भी चालू ही है गलती। अब बताओ क्या करूं, सारा कर लिया सामान, सब सब कुछ भी हो नहीं रहा है। कई हो के ऐसे हो के फोन आते हैं जो सेवा केंद्र पर रहते हैं, कुमार विशेष, क्यों इतनी कमजोर रह गई ये धारणा है, क्यों शरीर अभी तक खींचता है और उसको देखने की अब भी इच्छा है, बकेट ऑफ स्टूल एंड यूरिन क्या भरा है इसमें। तो जीवन यात्रा का समीक्षण, जीवन यात्रा का एनालिसिस, ये है मेरी ब्राह्मण जीवन। उसके बाद अगला पॉइंट है एक बाप दूसरा ना कोई, लव फॉर वन गॉड, एक ही बाबा के लिए प्यार, बस उसके अतिरिक्त और कोई नहीं। एक बड़ी बहन थे, वो कहते थे अपने दिल में चेयर रखा करो, सोफा नहीं। सोफा रखोगे तो बाकी लोग आके बैठेंगे, चेयर रखो एक सिंगल जिसमें बाबा बैठे। सोफा बड़ा होता है, तीन चार लोग आके बैठ जाएंगे। इंग्लिश में कहावत है, ही हू गिव्स टू गॉड सेकंड प्लेस इन लाइफ गिव्स हिम नो प्लेस। जो भगवान को अपने जीवन में दूसरे नंबर पर रखता है वो उसे कहीं पर भी नहीं रखता है। फर्स्ट लव फॉर वन बाबा, उसके बाद है मुरली चिंतन। मुरली का रोज की जो मुरली है, आज जो सुबह मुरली चली, ये मुलहरा मुख में डाल रहा हूं, मुलहरा कौन सा मुख हुआ मुलहरा, चिंतन करना है इसके ऊपर। सुख शांति, कौन सी सुख शांति, एक बाप दूसरा ना कोई, कौन सा एक बाप दूसरा ना कोई, क्या कहा मुरली में, ये क्यों कह दिया, वो क्यों कह दिया, सारे दिन भर ज्ञान की बुलबुल टिकलू 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 कहते रहे, मेंढक ट्राउ ट्राउ ना कहते रहे, क्या करते रहे, बुलबुल टिकलू टिकलू करते रहे। तो मुरली चिंतन को नियम बना देना है। अमृत वेला पूरा हुआ 4:45 बजे, 7 बजे मुरली चालू होती है, उसके बीच का जो पीरियड है इसको सफल करना है। यहाँ कितने लोग हैं जो जैसे ही अमृत वेला पूरा होता है, आ जाओ मेरे लाडलो, बेड से आवाज आती है, क्या जगर मगर, आ जाओ इधर राजयोग की राहों में, बीत चली दुख भरी रात स्वर्णिम सबात प्रभात में लाया हूँ, ताज तख्त और तिलक साथ लेकर मैं आया हूँ। बेड खींचता है, कब अमृत वेला पूरा हो और फिर सीधा 6 बजे उठेंगे। अब भी थोड़ा ठीक लग रहा है, नहीं तो दिमाग भारी हो गया था योग से सुबह सुबह। ये कैसा योग था, हमारे ओपीडी में लोग आते हैं जब योग करते तो एकदम भारीपन होता है, बाकी ठीक रहते हैं। अब कोई दवा होगी तो दो, बाकी ठीक रहता है। एक माता आई थी, यहां दर्द होता है, यहां चेस्ट पेन, कब होता है, सारा जांच किया, एक्सरे किया, वो किया, सब नॉर्मल। फिर से पूछा, कैसे, यही होता है ना दर्द, हाँ यही होता है, पर वो तब होता है जब एक आत्मा सामने आती है ना, तभी होता है। बस जैसे ही वो सामने आती है यहां एकदम से दर्द चालू होता है, और जो हट जाती है तो ठीक होता है। अब क्या करो, कोई इलाज, कोई एंजियोग्राफी कुछ है तो बताओ। इतनी नफरत भरी है किसी एक आत्मा के प्रति, जैसे ही सामने आती है यहां दर्द उठता है। उसके बाद मुरली चिंतन, उसके बाद नो की एक लिस्ट बनानी है अपने जीवन में। नो की, नो अर्थात अपनी डायरी के ऊपर लिख दो, बाबा ने मना किया है, खत्म, इसमें जाना ही नहीं है। आईटी ग्रुप का एक बहुत बड़ा व्यक्ति है, उसने अपने इंटरव्यू में लिखा था, डू नॉट गो ऑनलाइन विदाउट पर्पस। ऑनलाइन तब तक नहीं जाना है जब तक कोई लक्ष्य ना हो। यूट्यूब पे जा रहे हैं, केवल लक्ष्य के साथ जाओ, क्लास सुनना है क्लास सुनिए और निकल के चुपचाप बाहर आ जाओ, लक्ष्य के साथ। निर्लक्ष गए तो चालू कहां से करेंगे, एक क्लिक ब्रह्मा कुमार से शूद्र कुमार। डू नॉट गो ऑनलाइन विदाउट पर्पस, एमलेस सर्फिंग, कोई लक्ष्य नहीं है, बैठे और सर्फ कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, सारा दिन भर सेवाएं की सेंटर पर, यहां वहां, घर पर पहुंचे थोड़ा रिलैक्सेशन, 10 बजे चालू किया, 1 बज गया रात को, और उठने की आदत है 3:30 बजे, उठ गए, अमृत वेला भी किया, अनुभव क्या किया, सोने के समय जो अंतिम संकल्प है उठते ही वो पहला ही संकल्प होगा, जो रात को सोते समय देखा वही अमृत वेला सबकॉन्शियस के तल पर घूमेगा। उसके बाद श्रीमत, ऑब्जर्वेंस ऑफ श्रीमत, चेक करना है जो कितना गहराई से मैंने श्रीमत को समझा है। श्रीमत के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है, मॉडिफाई नहीं करना है। जैसे एक भाई है, 10 साल हो गया, मिलिट्री से रिटायर हो गया, वो कहता है बाबा ने कहा है ना मिलिट्री वालों के लिए ब्रेड रोटी खा सकते हैं, अभी रिटायर हो गया है, 10 साल हो चुके हैं उसको, अभी भी खाना चालू है क्योंकि बाबा ने कहा है। उस दिन मुरली में था कि चोरी से कुछ भी नहीं लेना है, आम तुमको लेना नहीं है। ज्ञान सरोवर में क्लास करा रहे तो एक भाई का आम नहीं लेना, पर लोग कहते थे तरबूज तो ले सकते हैं ना। बाबा ने तो आम के लिए कहा, मुरली में आम था कि तुमको चोरी से कुछ भी नहीं लेना है, पर तरबूज तो ले सकते हैं ना। छेड़छाड़ करना श्रीमत के साथ, अपने मिक्स करना उसमें, और फिर थोड़ा हाँ अभी मेरे लायक है। एक राजा है जिसके अचानक उसके खिड़की पर एक नया कबूतर आ जाता है। वो देखता है ये कैसा कबूतर है, हमारे देश में तो ऐसा देखा ही नहीं, हरे रंग का कबूतर और इसको ये लाल रंग के पंख, ऐसा कबूतर तो होता ही नहीं है, इसको हमको ठीक करना है। और उसको ठीक करते, पहले उसके पंख जैसे हमारे देश का कबूतर है वैसे काटो इसके, फिर उसके पर काटते, ये काटते, हाँ अब ठीक लग रहा है। और वो कबूतर अब बैठा है, उड़ ही नहीं सकता। ये श्रीमत है, इसको पकड़ा, ये ठीक नहीं लग रही है थोड़ी, इसको मैं जरा ठीक करता हूं अपने दिनचर्या की सेटिंग के हिसाब से, ये हटाओ ये हटाओ ये हटाओ, हाँ अभी ठीक है। सुविधाजनक श्रीमत, फिलोसॉफी ऑफ कन्वीनियंस। श्रीमत इज श्रीमत, वो माय मत एंड यूअर मत नहीं है, द मत है। नॉट यूअर वे माय वे, इट इज द वे, द वे। श्रीमत अर्थात परम मार्ग, बस यही मार्ग है। उसके बाद प्यूरिटी, ब्रह्मचर्य। इस यज्ञ में सबसे श्रेष्ठ धारणा कौन सी है? ब्रह्मचर्य की धारणा, प्यूरिटी की धारणा। और प्यूरिटी का आधार स्तंभ ब्रह्मचर्य। काम जीत जब तक नहीं बनेंगे तब तक जगत जीत नहीं बन सकते। आज ही की मुरली, भाई बहन में भी दाल नहीं गलती, कुछ दिन पहले था आज कहा, उसमें भी दृष्टि खराब होती है, केवल भाई भाई समझो। और तभी कहा वो मेंढक की बात, आंखों पर कब्जा हो, बहन बहन, भाई भाई, विशेष भाई विशेष बहन, किसी को भाई ही बना के रखा है, विशेष टोली विशेष राखी, किसी को बहन ही बना के रखा है, किसी को मां ही बना के रख दिया है। बाबा ने कहा इस यज्ञ में एक ही संबंध है सबका, भाई भाई बस। अलौकिक मां भी बनाएंगे तो उसमें भी फंसेंगे। इसने हमारा कोर्स किया, इसने हमको ज्ञान मिला है, उसी में फंस गए। दोष न ब्रह्मा कुमार का है न कुमारी का, दोष उम्र का है। दोष न ब्रह्मा कुमार का, दोष न ब्रह्मा कुमारी का, उम्र का। हॉर्मोन्स हाईजैक्स द इंटेलिजेंस। फिर जो हाथ राखी बांध रहा है, वासना उसको भी पकड़ सकती है। इसके लिए एक ही संबंध, भाई भाई या भाई बहन। बाबा ने तो भाई बहन से भी ऊपर करने का, संसार के लोग कहते हैं ये ब्रह्मा कुमारी वाले भाई बहन बनाते हैं, गलत कहते हैं, हम भाई बहन नहीं बनाते, हम भाई भाई बनाते हैं, ऐसे बोलना अभी उनको। बस एक ही संबंध है, यहां वैरायटी संबंध क्रिएट कर लिए तो फंसेंगे उसमें। किसी मां ने किसी ब्रह्मा कुमार को अपना बेटा ही बना के रख दिया, ये तो बहुत अच्छा है। किसी कुमारी को अपनी बेटी बना के रख दी, उसी में फंस गए। प्यूरिटी फर्स्ट, अव्यक्त मुरली, 15th November 2003। इसको छोटी बात नहीं समझना। बाबा हमने तो ऐसा ही कर लिया, ऐसा नहीं, बाबा हमने तो थोड़ा सा ही कर लिया, थोड़ा नहीं बहुत है, सफेद कागज पर काला दाग है। इसके लिए मधुबन में सबसे पहले यह धारणा को रिवाइज करना है, संपूर्ण पवित्रता, संपूर्ण ब्रह्मचर्य, चाहे कोई भी हो, फिर हो गृहस्थ, सेवा केंद्र निवासी, कुमार, सेवाधारी, कोई भी, सबके लिए धारणा है। अभी बच जाएंगे पर मुकदमा एक दिन बड़ी अदालत में जाएगा, तब क्या करेंगे? फैसला वहां होगा, उसके बाद प्रश्नों से परे स्थिति, निरंतर प्रश्न 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 प्रश्न, क्वेश्चंस 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 मन में है। क्या ऐसी भी स्थिति का अनुभव किया है कि जिसमें प्रश्न खत्म हो गया, किसी से कुछ पूछना नहीं है, बस बाबा से धन्यवाद करनी है, तुमने दो दिया बहुत, कोई कंप्लेंट नहीं है तेरी, किसी के प्रति कंप्लेंट क्वेश्चंस है ही नहीं। उसके बाद है संबंध, ये हम कहते तो है कि सारे संबंध एक बाप से हो, सारे संबंध एक बाप से हो, पर अनुभव कितना है? या मुरली अमृत वेला, आप तो बाप भी है, टीचर है, सदगुरु है, चलो आगे। एक एक संबंध का अनुभव, वो दोस्त है, वो सखा है, वो बॉडीगार्ड है, वो अंगरक्षक है, वो खिवैया है। एक माता थी जिसको उसका पति बहुत ही सताता था, और उसको हमने पूछा था कि आपने बाबा के साथ कौन सा संबंध जोड़ा, उसने कहा था मैंने बाबा के साथ संबंध जोड़ा है भाई का। कैसे? क्योंकि जब भी मेरा पति मुझे सताता था मैं बाबा को याद करती थी, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। उसके बाद मौन और एकांत। अगर सारे दिन भर आवाज 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 ही चल रहा है तो मौन और एकांत कब होगा? और ज्ञान समझ में मौन में ही आता है, ज्ञान समझ में एकांत में आता है। बाबा ने पादरियों का उदाहरण मुरलियों में दिया है, एकांत में जाकर माला जपते हैं। तुम भी एकांत में चले जाओ, छत पे चले जाओ, निसर्ग के सानिध्य में चले जाओ और वहां बैठकर मुरली का चिंतन करो। मुरलियों में आता है वास्तविक फूलों के सामने जाओ और उनके सामने बैठकर बात करो अपने आप से, इनमें से मैं कौन सा फूल हूं। मुरलियों में आया है ये भी, एकांत और मौन। उसके बाद है ट्रस्टी। ट्रस्टी अर्थात मालिकियत का अभाव, मालिकपन का अभाव, ये जो भी है मेरा कुछ भी नहीं है, ओनरशिप फ्री, ये बाबा का घर, बाबा की कार, बाबा का सेंटर, बाबा के स्टूडेंट, बाबा के जिज्ञासु, सब उसका है, वो देखेगा मुझे क्या करना है। इतना ट्रस्टीपन। ब्रह्माबाद को कभी बाबा ने कोई ऐसी एक बात कहती थी पाकिस्तान के बारे में, तो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल थी, भाई बाबा के पास से, बाबा आपने ये जो कहा ना ये ऐसा नहीं कहना नहीं तो ना गड़बड़ हो जाएगी उधर। बाबा ने कहा ठीक है मैं शिव बाबा को बोल देता हूं ऐसा ना कहे। इतना डिटैच्ड, जैसे मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूं, ऊपर से हो रहा है ट्रस्टी भाव। ये जो घर है, ये जो बच्चे है, ये सब बाबा के है, सब कुछ उसका। ये जो एक भाई था, जो भी सैलरी आती थी सबसे पहले बाबा की ट्रांसलेट के सामने जाके रख देता था, चेक आता था बाबा के ट्रांसलेट के सामने और फिर लेता था बाबा से मुझे मिला है। अब ये यज्ञ से मैं ले रहा हूं, किसी कंपनी से किसी दुकान से नहीं मिल रहा है मुझे सैलरी, यज्ञ से बाबा के सामने रख दिया, बाबा के सामने बैठे 10 मिनट, ये आपका है, अब मैं इसमें से लूंगा। ट्रस्टी मेरा नहीं है। बैंक का मैनेजर दिन भर वो गया, बैंक के लोग पैसे गिनते रहता है, उसको खुशी होती है कोई बैंक में पैसे जमा करना आता है तो, कोई पैसे विड्रॉ करके जाता है दुखी होता है नहीं, उसको कोई लेना देना नहीं, उसको अपनी सैलरी 1 महीने के बाद मिलती है। यहां तो बहुत एक्यूरेट रहना पड़ता है उसको। तो ट्रस्टी। उसके बाद में यूजिंग ज्ञान इन प्रैक्टिकल मैनर, ज्ञान को प्रैक्टिकल में प्रयोग करना, जो भी ज्ञान है उसको प्रैक्टिकल में यूज करना। ज्ञान केवल थियोरी के लिए नहीं है और नोट्स बनाने के लिए नहीं, कितनी डायरिया भर के रख दी है वही है डायरियों में, इधर कुछ भी नहीं है, मन की डायरी पर लिखना है सारा ज्ञान। अब्राहम लिंकन ने कहा है माय माइंड इज लाइक अ स्टील, वंस रिटन इट कैन नॉट बी इरेज्ड, मेरा मन स्टील की तरह है, उसमें लिखना बहुत कठिन है पर लिख दिया तो फिर मिटेगा नहीं। ऐसा ज्ञान के महावाक्य सीधा सबकॉन्शियस माइंड पे लिख देना है जो मिटे ही ना, और ज्ञान को प्रैक्टिकल में प्रयोग करना है सारे दिन भर। ये परिस्थिति आए कैसे करूं, कोई ग्लानी कर रहा है, कोई निंदा कर रहा है, क्या करूं, बोलूं, झगड़ा करूं या चुप रहूं, ज्ञान क्या कहता है, उसके बाद है वैराग। मेरी वैराग की धारणा कितनी है कि अभी भी संसार खींचते रहता है, संसार के आकर्षण खींचते रहता है। मन में जब तक संसार के लिए पूर्ण वैराग नहीं, तब तक अध्यात्म में उन्नति हो ही नहीं सकती। उसके बाद है व्यर्थ से मुक्त स्थिति। वेस्ट जो भी है आइडेंटिफाई करना, ये वेस्ट चल रहा है जीवन में, इसको उखाड़ के फेंक दो। कल जैसे कहा था, सत्य को उखाड़ के फेंक दो। उसके बाद है एक्सरे, दो बार एक्सरे करना है अपना, दो बार सेल्फ चेकिंग, एक सुबह अमृत वेले के बाद और एक रात को सोने से पहले या नुमाशाम से योग के पहले। उसके बाद है योगा ट्वाइस अ डे, दो बार योग, अमृत वेला और नुमाशाम का योग। और लास्ट है उमंग, उत्साह, जील एंड एंथुसियाज्म। तो ऐसी ये 26 बातें हैं, ए से लेकर जेड तक। फिर से हम रिवाइज कर रहे हैं, ए फॉर आत्मिक दृष्टि। क्या अभ्यास करना है? आत्मिक दृष्टि का अभ्यास करना है, जो 3-2 प्रयोग सुबह करने हैं सारे दिन भर। बी फॉर बैलेंस, क्या रखना है? बैलेंस, कहां कहां बैलेंस टूट रहा है आइडेंटिफाई करो। सी फॉर कंटेंटमेंट, अर्थात संतुष्टता, क्या जीवन में संतोष भरा पड़ा है, या अब भी लगता है संसार की प्राप्ति, या ये जॉब वो जॉब, इधर पैसा उधर पैसा। बच्चे बाप से पूछते, बाबा लॉटरी खरीदे आपके यज्ञ के लिए? बाप कहते मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी लॉटरी। बाप को आपको कुछ चाहिए तो बताओ, हम पैसे हैं हमारे पास। ऐसे बाबा से पूछते, बाबा कहते मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे ऐसे पैसे, ऐसे पैसे काम नहीं आएंगे यज्ञ के। गरीबों के पाई पाई से परमात्मा तालाब भरेगा, अव्यक्त महावाक्य इन्वर्टेड कॉमा। बाबा चाहते तो किसी भी मिलियनेयर बिलियनेयर करोड़पति को कब का टच कर दिए होते, सारे पैसे आ गए होते, पर वो नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ जो भोली भाली माता किसी सेंटर पर, किसी गीता पाठशाला, किसी गांव में बैठी है, जो रोज एक पैसा डालती है सेवा केंद्र में, उससे ये परमात्मा तालाब चल रहा है, किसी करोड़पति की पैसे से नहीं। संतोष है वहां पर। सी फॉर कंटेंटमेंट, डी फॉर ड्रामा, ई फॉर इकोनॉमी, इकोनॉमी करनी है वेस्ट नहीं करना है, एफ फॉर फूड, भोजन की जो धारणाएं बताई वो सारा, जी फॉर गिव, शुभ भावना, शुभकामनाएं, खुशी और दुआएं देनी है सबको, एच फॉर होली कंपनी अर्थात सत्संग, क्या करना है? सत्संग, जो अलग अलग प्रकार के सत्संग सुनाए, एक ही सत्संग नहीं है, केवल सत्य का संग, ऑडियो विजुअल सत्संग, दादियों का सत्संग, किताबों का सत्संग, व्यक्तियों का सत्संग, स्थान का सत्संग, वो भी सत्संग है। आई फॉर इनकल्केशन ऑफ वर्च्यूज, दिव्य गुणों की धारणा, जे फॉर जीवन यात्रा, के रह गया था कीपिंग चार्ट, चार्ट रखना अपना, क्या करना? अपना चार्ट रखना और अपना चार्ट खुद ही बनाना, रोज की मुरली से चार्ट बनाओ, मुरली सुनते सुनते ही चार्ट बनाना और रात में वही भरना और वही सोना, हर दिन नया चार्ट, चार्ट में भी नवीनता। उसके बाद एल, लव फॉर वन बाबा, एक बाप के लिए प्यार। उसके बाद एम, मुरली चिंतन, क्या करना है? रोज मुरली का अध्ययन करना है, मुरली का चिंतन, टॉपिक्स निकालने, पॉइंट निकालने हैं, आपस में चर्चा करनी है, पूछना है। एक दूसरे का फोन आया तो बाबा ने आज स्लोगन में क्या कहा, ऐसे बोलना, अच्छा मुरली में क्या था, ये बात करनी है। उसके बाद एन, नो की लिस्ट बनानी है, कौन कौन सी चीजें मुझे करनी नहीं है, बिल्कुल नॉट अलाउड, सिनेमा नो, ना उसका ट्रेलर ना मूवी। ऑनलाइन गेम्स, बैठकर गेम्स चालू है, बॉल ऊपर ऊपर नीचे, कार इधर कार उधर। ओ, ऑब्जर्वेंस ऑफ श्रीमत, श्रीमत की पालना करना। पी, प्यूरिटी। क्यू, क्वेश्चन से परे। आर, संबंध। एस, साइलेंस सॉलिट्यूड। टी, ट्रस्टी। यू, यूजिंग ज्ञान इन प्रैक्टिकल मैनर। वी, वैराग। डब्ल्यू, डब्ल्यू अर्थात वेस्ट से मुक्त। एक्स, एक्सरे ट्वाइस अ डे, एक्सरे अर्थात सेल्फ चेकिंग, दो बार कि कहीं गड़बड़ तो नहीं हुई आज सारे दिन भर, कोई श्रीमत का उल्लंघन तो नहीं हो गया, वाय योगा ट्वाइस अ डे, सुबह अमृत वेला नुमा शाम, वाय और लास्ट में जेड अर्थात झील अर्थात उमंग उत्साह। जो भी सेवा करो उमंग उत्साह से करना है, मर मर के नहीं करना है, दुखी होके नहीं करना है। किसकी सेवा है, किसने यहाँ बुलाया हमको, किसका सेवा केंद्र है, ये बहनों के निमित्त किसने बनाया, स्वयं भगवान ने, जैसे इन्होंने अपना जीवन अर्पित कर दिया इस यज्ञ में, हम भी अपना सारा सर्वस्व अर्पित कर दे। ये चाहती तो बहुत कुछ कर सकती थी संसार में, पर अपने जीवन को अपना सर्वस्व यज्ञ की वेदिका में स्वाहा करने वाली ये कोई साधारण आत्माएं नहीं है, तपस्विनी है। ये वही है जिनकी भक्तों भक्त पूजा कर रहे हैं मंदिरों में, वही आराध्य देविया है, जगत जननी है, इनसे सीखना है। तो केवल मेंढक मिसल ट्राओ 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 नहीं करना है, ज्ञान बुलबुल बनकर ज्ञान की टिकलू 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 करना है। ओम शांति।